ਹੈ ਫੁਨਾ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵਤਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਕਰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੋ ਘੜਿਆ ਉਹ ਸਤਿਅ ਕਾ ਸੰਗ ਯੋਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਨਿੱਤ ਯੋਗ ਕਾ ਦੋ ਘੜੀ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏ ਦੋ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਧੀ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਧੀ ਸੇ ਵੀ ਆਧ ਘੜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ ਮੰਗਲ ਹੋ ਜਾਏ ਹਮੇ ਸਤ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਤ ਜੜ ਔਰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਕਾ ਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਕਾ ਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸਤੂਏ ਸਭ ਕੰਨਿਆ ਕੋ ਖਿਲਾਓ ਪਿਲਾਓ ਬੜੀ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ ਅਬ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੋ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮਾਂ ਬੋਲਤੀ ਅਰੇ ਕਿਉਂ ਬਿਚਾਰੀ ਕੋ ਬੋਲੇ ਛੋਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੋ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਐਸੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਬਿਚਾਰੀ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਇਸਕੋ ਖਿਲਾਓ ਪਿਲਾਓ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੋ ਮੈਂ ਮਤ ਮਾਨੋ ਔਰ ਇਸਕੀ ਵਸਤੂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਤ ਮਾਨੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਚਾਰੇ ਦੇਹ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਦੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋਗੇ ਜਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਹੈ ਵਹੀਂ ਸੇ ਆਪਕਾ ਸਫੁਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਸੇ ਦੇਹ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਨਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਪ ਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਿੱਛਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਸੇ ਜਾਬਲਯ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਅ ਕਾਮ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਮੇ ਗਿਆ ਡੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਵਰ ਕੋ ਕਹਾ ਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੈਂ ਆਪਸੇ वो विद्या पाना चाहता हूँ जो विद्या के बाद और कुछ पाना ना पड़े वही जानना चाहता हूँ देव कि जिसको जानने के बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती आप मुझे स्वीकार करें नाथ मैं जन्मों का भटका कई माताओं के गर्भों में लटका पटका गया जन्म जन्म भरमत फिरो मिट्यो न मन को त्रास ये दशा थी उसके चित्त की समझ की। तब गौतम ऋषि ने पूछा कि जाबल्य पुत्र सत्यकाम तेरा गोत्र क्या है बोले मेरे पिता थे तो मेरी माँ अतिथि और भक्तों आते जाते थे साधु संत उनकी सेवा के लिए जो भोजन बनाती थी इतनी व्यस्त रहती थी कि मेरे पिता से वो पूछ न पाई कि अपना कुल गोत्र क्या है गौतम ऋषि ने कहा इतना स्पष्ट और सत्य बोलने वाला तू ब्राह्मण पुत्र ही है दूसरा कुछ न कुछ ए कर देगा तात तू मेरे आश्रम में रहने के योग्य है जो गुरु के साथ झूठ बोलते हैं या ऊं करके बात घुमाते हैं गुरु के तो बाल सफेद हो जाएंगे लेकिन उनका हृदय काला ही काला रहेगा जो गुरु से झूठ बोलते हैं और कपट करते हैं तो ऐसे गुरु के बाल सफेद हो जाएंगे गुरु जल्दी बुड्ढा हो जाएगा झूठे चेलों के बीच रह के गुरु जी विक्षिप्त हो जाते कैसे सुधारें इनको कैसे उन्नत करें बेईमानों को कपटियों को गुरु के बाल तो जल्दी सफेद हो जाएंगे उनका हृदय तो काला काला रह जाएगा उसने तो स्पष्ट बोल दिया गुरु ने कहा तू सत्य भाषी है मित भाषी है और सत्य स्वरूप नित्य योग को जानने की इच्छा से आया है तात तू धन भागी तू मुझे स्वीकार शिष्य गुरुदेव आज्ञा करिए सेवा दीजिए गुरु ने कहा तात ऐसा करिए कि दुबली पतली गाय चुन चुन कर गुरुजी ने दिखा दी ये 400 गाय है जंगल में ले जा इनको खूब जंगल का घास चारा और कुदरती वातावरण में रख और ये 400 गाय में से जब 1000 गायें हो जाए तब तू आयो गुरु की सेवा शिरोधार्य करके जाबल्य पुत्र सत्य काम 400 दुबली पतली गायों को जंगल में ले गए, जहां जलाशय होता, खूब चारा आदि होता, वहां गायों को चराता, देखभाल खूब करता। सुबह शाम ईश्वर का चिंतन ध्यान करता और गुरु की दी हुई सेवा, वो भी एक साधन है, भजन है, ऐसा समझकर जितने दिन जहां रहना उचित समझता था रहता, फिर दूसरी जगह जाता। कभी ये नहीं सोचा कि 400 गायों मां अकेलो, मुझे 10 आदमी चाहिए, कभी ये नहीं सोचा। 400 गाय और वो अकेला बंदा सत्य काम। अब उसको ये भी नहीं रहा कि हाय रे कब 1000 गाय होगी, ये 900 हुई, ये 950 हुई, 999 हुई, अब एक बेटा बेटी हो जाए गाया तो हमारा मेरा काम बन जाए, ये भी नहीं सोचा। एक सनातन सत्य है कि परमात्मा इतना सूक्ष्मतम है प्रकृति की गहराई में कि सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है, चला रहा है, और आवश्यकता अनुसार उभार भी लेता है परिस्थिति। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव छह महीना अंधकार रहता है, तो वहां वो प्रकृति में परमात्मा ऐसा कुछ प्रकाश फैला देता है कि वहां भी जीवन है, जीव है, जी रहे। ये कैसी उसकी चेतना है कि कान पर मच्छर गुनगुना रहा है, पीठ पर कीड़ी चल रही और पैर में कोई जीव जंतु का हाथ वहीं पहुंच जाते, पैर वहां हिलने लगते, मूवमेंट होने लगता है। कैसा व्यापा है तुम्हारे प्राकृतिक शरीर में, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में व्यापा है। जैसे तुम्हारे इस प्राकृतिक शरीर में व्यापा हुआ परमात्मा, ऐसे ही पूरी प्रकृति में व्यापा हुआ परमात्मा है। जल में, थल में, अग्नि में, तेज में, वायु में, सब में व्यापा हुआ है। जैसे तुम्हारे हाथ में, पैर में, नाक में, पीठ में, घुटने में, सब में व्यापा हुआ उसका चैत्य, ऐसे इन पंच महाभूतों में परमात्मा व्यापा हुआ है। कभी भी तुम्हारी उंगली चेतना की खबर दे सकती है। ऐसे ये अग्निदेव, जलदेव, वायुदेव, आकाशदेव और पृथ्वीदेव, इनमें से कभी भी परमात्मा कोई भी लीला करके उभर सकता है। जैसे गीत गोविंद के कर्ता जयदेव ने दुख देने वालों के प्रति भी उदारता का व्यवहार किया और राजा के पास वे आए तो राजा को बताया नहीं कि ये मेरे हाथ पैर काट के कुएं में फेंकने वाले दुष्ट हैं, नहीं, ये मेरे मित्र हैं, इनको आप दक्षिणा दीजिए। राजा ने देखा कि जयदेव के मित्र ने तो खूब दान दक्षिणा तो दिया साधु वेशधारी उन बदमाशों को, देखा कि भाई जयदेव को भी किसी बदमाशों ने दुख दिया, जयदेव बताते नहीं तो इन महात्माओं को कोई दुख न दे, इसलिए पुलिस भेजी साथ में। तो पुलिस अधिकारी ने पूछा सिपाहियों के वरिष्ठ ने कि जयदेव से आपकी क्या मित्रता है, उन्होंने कहा कि जयदेव ऐसा है वैसा है और हमने उसको प्राण दान दिया इसलिए हमारी खुशामद करता है। तो बिल्कुल सरासर झूठी बात थी, सिपाहियों ने तो सुन ली, लेकिन जिस धरती पर कदम रख रहे थे उस सृष्टिकर्ता से सहा नहीं गया अपने भगत पर ज्यादा अन्याय और जुल्म। तुरंत धरती फटी और वे जो लुटेरे थे साधु वेश धारण करके आए रीवा रीवा के मर गए। वही परमात्मा जब हम किसी श्रेष्ठ पुरुष से झूठ बोलते तो हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती और भीतर से नालत भी बरसती। वही परमात्मा है कि जब हम सतपुरुष से या किसी भी पुरुष से मधुर व्यवहार, सच्चाई का व्यवहार, हितकर व्यवहार करते हो तो अंदर खुशी भी भरता है, आनंद भी भरता है, सामर्थ्य भी भरता है। तो शक्ति का हरता भी वही है, शक्ति का भरता भी वही। ऐसा वो सच्चिदानंद परमात्मा ऋषभ के द्वारा बोला, जयराम जी की, अल्फर्ट पार्क में सिंपल सेक्शन जब किसी संत को सताता और संत बोलते तू भगवान नहीं ऐसा चिल्लाता है, ले 8 दिन ध्रुव पर त्राटक करना, भगवान तुझे दिखाएंगे अपना प्रभाव, तो सिंपल सेक्शन का कुत्ता उसके छाती पर एक शाम को बैठ जाता है संध्या को और कहता है मानवी भाषा में के ईश्वर के अस्तित्व का इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहता है मूर्ख। तब वो सिंपल सेक्शन मानता है कि कुत्ते के द्वारा जो मनुष्य की भाषा बोल सकता है वो जरूर सर्वसमर्थ भगवान ही है, दूसरे का काम नहीं। हंस के द्वारा भी भगवान मानुषी भाषा बोलवा लेते। अरे मुर्दे को किसी फकीर के संकल्प के द्वारा जिंदा भी करवा लेते। अब तो जयराम जी बोलना पड़ेगा भाई। मेरे गुरुदेव जा रहे थे और किसी माई का बेटा मर गया, देखा कि कान में समर्थ योगी और पगडंडी पे रख दिया। गुरुजी घूमने जा रहे थे, देखा कि बच्चा, बोले बेटा कौन कौन ये से? देखा कि तो ऐसे ही सोया, मार दिला, अरे उठ। वो बेटा रोने लगा, माई छुप के खड़ी थी, पैर पकड़ा, बोले माई तो बा करी, मेरे को क्या पता तू ऐसा करेगी, करामत का खर्च कराएगी। फिर उसी इलाके में नहीं रहे, लेकिन माई को बोला था जा चुप रहे, किसी को बोलना नहीं। नारायण हरि नारायण बोलो ना, कांजूसी ना करो। मेरे गुरुदेव की बात में फिर मजा लेना चाहिए ना। मैं सदगुरु की बात कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव की बात कर रहा हूँ। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो जब हजार गौवें हो गई तो गौओं में जो था ऋषभ था, उसने कहा सौम्य सत्यकाम हमें अपने गुरु के द्वार पर ले चलो, गिनो हजार गौवें हो गई है, तुम्हारी सेवा निष्काम सेवा से हम प्रसन्न हैं। कौन बैल रहे हैं? बोल रहे हैं बैल बोल रहा है, नहीं बैल के अंतःकरण में जो तुम्हारा हमारा बाप बैठा है वो बोल रहा है। फिर से जयराम जी बोलना पड़ेगा, वो भी तो गुरु है, वो भी तो गुरु है भैया, गुरुओं का गुरु है। ब्रह्म के एक पाद का मैं तुम्हें उपदेश देता हूं, ध्यान से सुन। ब्रह्म के एक पाद का उपदेश मिला, बोले दूसरे पाद का उपदेश तुम्हें अग्निदेव से प्राप्त होगा। सत्यकाम चला, चलते चलते संध्या हुई, जलाशय देखा, गायों के विश्राम की जगह देखी। वो इतनी तत्परता से सेवा करता कि और भी लोग अरण्य में 25-50 गाय चराने वाले धोखा खा जाते, उनकी गायों की हिंसा हो जाती, लेकिन इसकी हजार गायों में से एक गाय को भी कभी हिंसक पक्षी पशु छू नहीं सका। इतना निष्कामता के कारण, इसकी तत्परता और निष्कामता के कारण कार्य क्षमता बढ़ी थी और वो परमात्मा संतुष्ट रहता है। जो जी चुराते ने सेवा में उसका परमात्मा संतुष्ट नहीं रहता, इसलिए उनकी बुद्धि मारी जाती। जयराम जी जो सेवा से कतराते हैं, जी चुराते हैं, उन पर परमात्मा भी खुश नहीं रहता और गुरु का आत्मा भी प्रसन्न नहीं रहता, डांट पड़ाता है, फटकारता है। जो तत्परता से करते हैं उनकी सेवा में फिर ज्यादा दिन गलतियां नहीं रहती, और जो बेदरकार टट्टुओं की नाई सेवा करते हैं वो ठीक है बेचारे, देर सवेर पहुंचे धक्के मुक्के खा के। जलाशय में स्नान किया, पूर्व दिशा में बैठे, अग्नि प्रज्वलित किया, अग्निदेव की आराधना की और जो कुछ विधि किया। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला, कुले विष्णु सर्व विष्णु मही जगत। जैसे आप पूरे शरीर में है ऐसे ही वो वासुदेव विष्णु पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र ओतप्रोत है, कभी भी कहीं से भी वो प्रकट हो सकता है, प्रेरणा दे सकता है, सहायता दे सकता है। ऐसे कई दृष्टांत और कई घटनाएं और कहानियां आपने हमने सुनी है और कई प्रसंग आपके और हमारे जीवन में आए भी हैं। चारों तरफ से मुसीबत से घिर जाते हो, देखा कि अब कोई नहीं है और चुपचाप हो जाते हो, तो न जाने अदृश्य सहायता कैसे कोई रास्ता खोल देती है और बड़ा भारी मुसीबत का बोझ हट जाता है। ये आपका हमारा अनुभव है। फिर से जयराम जी बोलना पड़ेगा। यज्ञ पुरुष यज्ञ से खीर का कटोरा लेकर प्रकट हो सकता है, तो सतगुरु के सत शिष्य के लिए परब्रह्म परमात्मा अग्निदेव के द्वारा अग्नि रूप में प्रकट हो जाए, इसमें संदेह करना सत सत्संगियों के बस लिए नहीं है। कुछ संगी भले करें। अग्निदेव प्रकट हुए, ब्रह्म के दूसरे पाद का उपदेश दिया और कहा कि वत्स, तुम्हें तीसरे पाद का हंस रूप में भगवान उपदेश करेंगे। महाराज तीसरे दिन वही यात्रा करते, तीसरे दूसरे दिन की शाम हुई, तीसरे दिन का सुबह हुआ, ध्यान भजन में बैठे, शांत बैठे थे, वो हंस आए और हंस ने ब्रह्म ज्ञान के तीसरे पाद का उपदेश दिया। चौथे पाद का उपदेश, तुम्हें मिल जाएगा जलमृग के रूप में। हंस कह के चले गए, चौथे दिन जलमृग आकर खड़ा हो गया और ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। ये जलमृग कौन थे, हंस कौन थे कि भगवान सूर्य हंस रूप लेकर आए थे, भगवान अग्निदेव अग्नि से प्रकट हुए थे और भगवान वायुदेव वृषभ रूप से बोले थे, और जलमृग के रूप में प्राण देवता ने उपदेश दिया से यात्रा करते करते इनके चित्त में जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिला चार पादों में, तो चित्त में ब्राह्मी मस्ती आई, बुद्धि में ब्रह्म निष्ठा आई, तो चेहरे पर निश्चिंतता, आंखों में शांति और आध्यात्मिक चमक सुख बरसाने वाली वो तरंगे उभरी। गुरुदेव ने देखा अपने शिष्य को, कहा वत्स, तू मेरे उपदेश के बिना ही ब्रह्म तेज से संपन्न होकर आया है, सच बता ये ब्रह्म ज्ञान तेरे को कहां से मिला ब्रह्म उपदेश। बोले गुरुदेव, आप सबके अंतःकरण में हैं, सब रूपों में आप हैं, ऋषभ रूप में, अग्नि रूप में, हंस रूप में, जलमग रूप में आप ही की कृपा, फिर भी गुरुदेव आपके आचार्य रूप में सद्गुरु रूप में मिली, सद्गुरु स्वरूप से मिली हुई विद्या ही सर्वोपरि विद्या, सर्वश्रेष्ठ विद्या मानी जाती है। आप फिर से मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं मनुष्य तनधारी हूँ और आपने भी ये मानवी चोला धारण किया है, तो आपका और हमारा वास्तव में नित्य योग का ज्ञान स्थिर रह सकता है। गौतम ऋषि ने कृपा करके ब्रह्म के चारों पादों का उपदेश दिया और वो ज्ञात गेय सुख रूप हो गया। जिसको जानने से कुछ जानना नहीं रहता, जिसको पाने से कुछ पाना बाकी नहीं रहता, और जिसमें स्थित होने के बाद संयोग जन्य सुख में कितना भी गड़बड़ आए तो भी उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उसका नित्य योग अपने परब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष से हो गया है।